लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार के आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार के आमदर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन प्रेरितिक निवास की पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Nella catechesi precedente abbiamo visto come la preghiera cristiana sia ancorata nella liturgia.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हमने अपने पिछले धर्म शिक्षा में इस बात को देखा कि कैसे ख्रिस्तीय धर्म विधि की प्रार्थना हमें स्थिरता प्रदान करती है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे धर्म विधि हमारे दैनिक जीवन के लिए सदैव जीवन का स्रोत बनती है, जिसके फलस्वरूप हम जीवन के मार्ग, अपने कार्यस्थलों में, परिवहनों में भी ईश्वर के संग अपनी वार्ता जारी रखते हैं। वह जो प्रार्थना करता एक प्रेमी की तरह होता है, जो हमेशा अपने हृदय में अपने प्रेमी को धारण किए रहता जिससे वह प्रेम करता है। वास्तव में हमारे लिए सारी चीजें ईश्वर से वार्ता का अंग बनती हैं। हमारे जीवन की हर खुशी उनकी प्रशंसा का कारण बनती है। हर कठिनाई हमारे लिए एक अवसर होती जहां हम सहायता की मांग करते हैं। प्रार्थना सदैव हमारे जीवन में सजीव बनी रहती है, मानो वह अंगारा हो, यद्यपि वह मुंह से उच्चारित ना भी हो। हर सोच, चाहे वह अपने में स्पष्ट रूप से अपवित्र ही क्यों ना हो, प्रार्थना का स्वरूप हो सकती है। हम मानवीय बुद्धि में भी प्रार्थना की उपस्थिति को पाते हैं, जो एक झरोखे स्वरूप रहस्यों की ओर झांक कर देखती, जिन्हें हम अपने जीवन के कदमों के रूप में आलोकित पाते, जो हमें अपने जीवन की संपूर्ण सच्चाई को समझने के योग्य बनाती है और हम उसके अनुरूप जीवन यापन करते हैं। इस रहस्य का चेहरा चिंतित या अशांत करने वाला नहीं होता, बल्कि यह ख्रिस्त का ज्ञान हमें आत्मविश्वासी बनाता, यद्यपि हम चीजों को अपनी आंखों से नहीं देखते और उन्हें अपनी बुद्धि से नहीं समझते, लेकिन उस कुछ नहीं की स्थिति में भी हम ईश्वर के अनंत कृपा का एहसास करते हैं।
E così la preghiera cristiana trasfonde nel cuore umano una speranza invincibile.
ख्रिस्तीय प्रार्थना मानव के हृदय में एक अजेय आशा उत्पन्न करती है। हम चाहे किसी भी अनुभूति से होकर जीवन में गुजरते हैं, ईश्वर का प्रेम उसे अच्छाई में बदल सकता है, संत पापा ने कहा। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा इसके बारे में कहती है, हम अपने जीवन के विशेष क्षणों में ईश वचनों को सुनते हुए और पास्का के रहस्य में सहभागी होते हुए प्रार्थना करना सीखते हैं, बल्कि हमें अपने जीवन की हर घटना में प्रतिदिन ईश्वर का आत्मा प्राप्त होता है, जो हममें प्रार्थना के भाव जागृत करता है। समय पिता ईश्वर के हाथों में है, जिससे हमारी मुलाकात अतीत या भविष्य में नहीं, वरन वर्तमान समय में होती है। आज को छोड़कर हमारे लिए और कोई दूसरा समय अति सुंदर नहीं हो सकता, जहां हम अपने को जीवित पाते हैं। संत पापा ने इस बात की ओर इंगित कराया कि बहुत से लोग हैं जो भविष्य को सोचते हुए जीवन व्यतीत करते, लेकिन वर्तमान को देखना भूल जाते हैं। वर्तमान सत्य है, यह हमारे लिए वास्तविकता है। हम वर्तमान समय में प्रार्थना करते हुए यीशु से मुलाकात करते हैं। यह प्रार्थना है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, हमारे क्रोध को शांत करता, प्रेम में बनाए रखता, हमारी खुशी दोगुनी करता और हमें क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अपने में जीवित नहीं हैं, बल्कि वह कृपा हम में क्रियाशील है जो हमें प्रार्थना द्वारा प्राप्त होती है। हम अपने में उस समय की याद करें, संत पापा ने कहा, जब हम क्रोधित होते हैं, असंतुष्टि का अनुभव हम में कटुता का एहसास लाती है। ऐसे समय में हम कहें, ईश्वर आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, और ईश्वर आपको सही बातों से भर देंगे और आप बिना नकारात्मक भाव से आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि प्रार्थना सदैव अपने में सकारात्मक होती है जो हमें आगे ले चलती है। प्रार्थना से शुरू किया हुआ दिन हमें अपने जीवन को साहस में जीने हेतु मदद करता है। इस भांति हम जिन मुसीबतों का सामना करते, वे हमारी खुशी के मार्ग में चुनौतियां नहीं बल्कि ईश्वर से मिलन हेतु अवसर बनती हैं। वह जो ईश्वर के सानिध्य में रहता, अपने जीवन में साहस, स्वतंत्रता और अधिक खुशी का अनुभव करता है। संत पापा ने कहा,
प्रियमो दुंके सेंप्रे पर टुटो ए पर टुटी एंके पर आई नेमिजी।
आइए हम रोज दिन सबके लिए प्रार्थना करें, अपने शत्रुओं के लिए भी जिनके लिए यीशु हमें प्रार्थना करने की सलाह देते हैं, जैसे कि हम सुसमाचार में पाते हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जिन्हें हम नहीं जानते हैं। प्रार्थना हमें ईश्वर के अथाह प्रेम से संयुक्त करता है। इससे भी बढ़कर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो उदास हैं, जो अकेलेपन में रोते और निराशा के शिकार हैं, जिससे वे किसी के द्वारा प्रेम किए जाएं। प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होता है और ख्रिस्तीय की प्रार्थना यीशु की करुणा को व्यक्त करती है। उन्होंने करुणा भरी निगाहों से भीड़ को देखा जो अपने में खोई हुई भेड़ के समान बिना चरवाहे के थे। करुणा, कोमलता और निकटता यीशु के कार्य करने की शैली हैं। हम उनके इन तीन गुणों को कभी ना भूलें। प्रार्थना गलतियों और पापों के बावजूद हमें दूसरों को प्रेम करने के योग्य बनाती है। व्यक्ति अपने कार्य से महत्वपूर्ण है और यीशु इसे समझती और दुनिया को दोषी नहीं ठहराते, वरन उसे बचाते हैं। व्यक्ति जो दूसरों की निंदा शिकायत करते हुए सदैव दूसरों में दोष खोजने को लगा रहता, उसका जीवन अपने में बुरा हो जाता, वह अपने जीवन में ना खुश रहता है। यीशु हमें बचाने आते हैं, अतः हम अपने हृदय को क्षमा, न्याय, समझ, दूसरों के निकट रहने, दूसरों के लिए करुणा और कोमलता हेतु खोलें, जैसे कि यीशु ने किया। हमें यह याद करते हुए कि हम सभी पापी हैं, हर किसी को प्रेम करने की आवश्यकता है। साथ ही हमें यह याद करने की जरूरत है कि यीशु हमें व्यक्तिगत रूप में प्रेम करते हैं। विश्व को इस रूप में प्रेम करने के द्वारा हम इस बात का अनुभव करेंगे कि हर दिन और हर चीज अपने में ईश्वर के रहस्य को वहन करती है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा हमें पुनः कहती है, हर दिन और हर क्षण की प्रार्थना नन्हे बालकों में ईश्वरीय राज्य के रहस्य का उद्भेदन है जो ईश्वर के सेवक हैं। यह हमारे लिए उचित और आवश्यक है कि हम प्रार्थना करें जिससे ईश्वरीय न्याय और शांति का राज्य दुनिया में स्थापित हो। साथ ही विनम्र प्रतिदिन की स्थिति में प्रार्थना करना उतना ही महत्वपूर्ण है। संत पापा ने कहा, नर और नारी हम सभी वायु की भांति घास की धार के समान हैं। दर्शन शास्त्री पास्कल ने लिखा है,
Non serve che l'universo intero si armi per schiacciarlo. Un vapore, una goccia d'acqua è sufficiente per ucciderlo.
पूरे ब्रह्मांड को उसे कुचलने हेतु हथियार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वाष्प, पानी की एक बूंद ही उसे मारने के लिए पर्याप्त है। हम सभी क्षणभंगुर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान और हमारी ताकत है। हम हर क्षण और हर परिस्थिति में प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु हमारे निकट हैं। और जब कभी हम यीशु के हृदय अनुसार एक प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रार्थना हमारे लिए चमत्कार करती है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार ये आमदर्शन समारोह के दौरान उत्तर भारत में आए हिंसक बाढ़ के पीड़ितों को याद कर उनके लिए प्रार्थना की। भारत स्थित उत्तराखंड के जमोली जिले में 7 फरवरी को एक बड़ा ग्लेशियर टूट गया, जिसके चलते धौली गंगा नदी में भारी बाढ़ आई। बड़ी संख्या में नदी के किनारे बसे घर भी बह गए। ऋषि गंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, मैं उत्तरी भारत में 3 दिन पहले आए आपदा के पीड़ितों के लिए अपने निकटता व्यक्त करता हूं, जहां ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटने के कारण हिंसक बाढ़ आई, जिसने 2 बिजली संयंत्र के निर्माण स्थलों को विध्वंस कर दिया। मैं मृत श्रमिकों और उनके परिवारों तथा सभी घायल और क्षतिग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद संत पापा ने पूर्वी देशों में नव वर्ष मना रहे लोगों को शुभकामनाएं दी। संत पापा ने कहा, सुदूर पूर्व और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार 12 फरवरी को लाखों लोग चंद्र नव वर्ष मनाएंगे। मैं उन सभी को और उनके परिवारों को अपनी सौहार्दपूर्ण शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही मेरी इच्छा है कि यह नया साल भ्रातृत्व और एकजुटता का फल लाए। इस विशेष क्षण में जब लोग महामारी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो न केवल लोगों के शरीर और आत्मा को प्रभावित करती है, बल्कि सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करती है, मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई पूर्ण स्वास्थ्य और जीवन में शांति का आनंद ले सकेंगे। संत पापा और लोगों के बंधुत्व की सेवा में इस प्रकार संत पापा पियूस 11वें द्वारा शुरू किया गया रेडियो ब्रॉडकास्ट महामारी के समय में अपने मिशन पर पुनः विचार कर रहा है। वाटिकन रेडियो जो दूरदर्शी ज्ञान के साथ स्थापित है, संत पापा के विचार और आवाज की सेवा में है, समय समय पर गति और प्रभावशीलता के साथ अपनी गूंज फैलाने के लिए है, और यह संत पापा के मजिस्टेरियम के प्रसार का साधन है। शुरू से ही यह आधुनिक तकनीक सार्वभौमिक अर्थ में लोगों के बीच आपसी भाईचारे की सेवा में समर्पित है। संत पापा जोन 23वें द्वारा 12 फरवरी 1961 को बोले गए शब्द इन दिनों भी अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखते हैं। जब वाटिकन रेडियो अपने 90 साल का समारोह मनाता है और कलीसिया संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र फ्रातेली तुती के संदेश का आत्मसात कर रही है, गुइलेर्मो मार्कोनी द्वारा निर्मित और जेस्विट पुरोहितों को सौंपा गया संत पापा पियूस 11वें द्वारा संचालित प्रसारण का यह विशेष समारोह महामारी के कारण मानवता के इतिहास में एक मुश्किल समय में आया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जो फेफड़ों को संक्रमित करती है, वायरस की उदासीनता जो अक्सर हमें खुद को भाइयों के रूप में पहचानने से रोकता है, एक कार्यक्रम अनुसूची और मिशन के अर्थ को फिर से परिभाषित करता है। कोविड 19 के वर्ष में संत पापा के प्रसारक ने नेटवर्क बनाने और लॉकडाउन के कारण अलग थलग पड़े लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने दुनिया में हो रहे कई अच्छे रचनात्मक अनुभवों के बारे में प्रसार किया। एक प्रकरण है जिसमें पिछले वर्ष सबसे ज्यादा वाटिकन रेडियो के इतिहास को चिन्हित किया गया। 2 साल से नाइजर और माली के बीच जिहादियों के कैदी फादर लुइजी मैकाली की गवाही है। उन जिहादियों ने फादर लुइजी मैकाली को एक राम शेकल रेडियो दिया। फादर ने कहा, मैं हर शनिवार वाटिकन रेडियो से रविवार ये पाठों पर चिंतन सुनता था। एक बार पवित्र मिस्सा का सीधा प्रसारण सुनने को मिला। वह वास्तव में संत पापा का पेंतेकोस्त 2020 का पवित्र मिस्सा था। वाटिकन रेडियो संत पापा के संदेश को फादर मैकाली जैसे कई पुरोहितों के लिए जारी रखता है जो पृथ्वी के सबसे दूर दराज के कोनों में सुसमाचार के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हैं। वह दुनिया को बताता है कि वह हर किसी का ध्यान रखता है और उनकी कहानियों को साझा करता है। उधर सुरक्षित इंटरनेट दिवस 17 साल पहले यूरोपीय संघ की एक पहल के रूप में शुरू हुआ था। यह आज दुनिया के कम से कम 170 देशों में मनाया जाता है। पूरे विश्व में सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात मंगलवार को मनाया जाता है। यह दिवस 2004 में यूरोपीय संघ के सेफ बिल्डर्स प्रोजेक्ट की पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। यूरोपीय आयोग के सुरक्षित इंटरनेट केंद्रों के असुरक्षित नेटवर्क के कारण इस मुद्दे को उठाया गया था, जो 2005 में इसकी शुरुआती कार्यवाही में से एक था। इस वर्ष 9 फरवरी मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया, जिसका विषय था बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ। यह हर किसी के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और बेहतर जगह बनाने हेतु शामिल होने का आह्वान देता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस के एक दिन पहले संत पापा फ्रांसिस ने राजनयिकों और अधिकारियों को कहा, घर पर बिताए लंबे समय ने अधिक से अधिक अलगाव का कारण बना दिया है, क्योंकि लोग कंप्यूटर और अन्य मीडिया के सामने घंटों समय गुजारते हैं। अधिक संवेदनशील, विशेष रूप से गरीब और बेरोजगारी के गंभीर समस्या में वे अपने सबसे अमानवीय पहलुओं में साइबर अपराध के लिए आसान शिकार बन जाते हैं, जिसमें धोखाधड़ी, व्यक्तियों की तस्करी, वैश्यावृत्ति के शोषण, बाल वैश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी शामिल है। दूरस्थ शिक्षा में बच्चों और किशोरों की इंटरनेट पर और सामान्य रूप से संचार के आभासी रूपों पर अधिक निर्भरता के कारण उन सभी को ऑनलाइन आपराधिक गतिविधियों के लिए अधिक संवेदनशील बना दिया गया है। उधर म्यांमार के धर्माध्यक्षों ने सैन्य तख्तापलट के दौरान हिरासत में ली गई आंग सान सू की सहित अन्य राजनीतिक नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की। 9 फरवरी को जारी एक बयान में म्यांमार धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने कहा, हम सभी ख्रिस्तियों से अपील करते हैं कि वे देश में शांति और न्याय के लिए उपवास और प्रार्थना करें। उन्होंने पुरोहितों, धर्म बहनों और सेमिनारियों को कैथोलिक कलीसिया के झंडे या कैथोलिक प्रतीकों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। वे म्यांमार के नागरिकों के रूप में अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।